हमार छोटकी छौड़ी है सरकार, राजपुर ब्याही है, शिव उपट से जवाब देता। अगर कभी 5-6 साल की छोटी बच्ची को उंगली पकड़ाए मिष्ठान सुंघाता हुआ वह ले जा रहा होता तो कहता, हमारी बड़की बिटिया की लड़की है साहेब, ननियौरे में रही है ना, माई बाप से ज्यादा नानी नाना से पर की है। कभी फुआ की लड़की होती तो कभी पतो, कभी शिव बो के ननद के जेठ की लड़की की लड़की, कभी कोई यानी कोई रिश्ता जोड़ने में शिव को कभी सपचाहट नहीं होती। शुरू के दिनों में उसने छोटी मोटी जेहल भी काटी, मार भी खाई, नुकसान भी उठाया, लेकिन इसी क्रम में वह धीरे धीरे पक्का होता गया। हवालात में आते जाते उसने पुलिस को पटाना सीख लिया और जैसे ही इस क्षेत्र में उसे कामयाबी मिली उसका काम और आसान हो गया। अब वह एक छुट्टे मदमस्त सांड की तरह निर्भय घूमता था, लेकिन गुरु बाबा की एक बात उसने गांठ बांध ली थी, ज्यादा सहको मत, किसी का विश्वास मत करो और संगी साथी की शक को शक की नजर में रखो। यही वह कनफू का मंत्र था जिसको गुल्ली में गुहाए वह धंधे पर निकलता था। उसने अब तक कितने घर बसाए और कितने उजाड़े इसकी गिनती खुद शिव महतो के पास नहीं है, लेकिन शिव महतो का कहना है कि वह पुण्य का काम करता है, वह औरतों का उद्धार करता है, तरन तारण करता है। ऐसे माई बाप जो अपनी बेटियों का ब्याह नहीं रचा सकते, जो पाई पाई के मोहताज हैं, जिनको पेट के लाले पड़े हैं, जिनके तन पर बस्तर नहीं है, जो हरामी जमी जिम्मेदारों के कर्जे में हैं, उनको वह मदद करता है। हे गुरु बाबा, वह अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर अकेले में कभी कभी कहता है, मस्त रहो गुण दे गए, अब बैकुंठ में मस्त रहो महाराज। पूरे टोले में जहाँ छान छप्पर खपड़ा और टीन टप्पर के दड़बे हैं, वहीं शिव महतो का ईंट का पक्का मकान है। आंगन में चांपाकल है, दुआरे पर मुर्रा भैंस बंधी है, घर ही में चार प्राणी हैं, बलिक हैं ही नहीं। थे शिव महतो शिव बो, उनका इकलौता लड़का मरकटवा और मरकटवा बो। मरकटवा वो अब नहीं है, घर का सारा काम मरकटवा वो ही करती थी जब तक वह थी, यानी वह आंतर देकर सारे कमरे वो सारे और आंगन गोबर से लिपती थी, छत पर चिपरी पासती, हरेठा रखती, सुबह सवेरे जब चुनमुन चिड़ैया बोलती तो वह उठ जाती और खांची लेकर सरे की ओर निकल जाती। दिन चढ़ते वह मुर्रा भैंस के लिए खांची भर हरी धूप ढोल कर ले आती, फिर भैंस धोती, सानी पानी करती, फिर सबके लिए रोटियां पासती। उसका पति यानी मरकटवा दिन भर खटिया तोड़ता, सिर में पांव भर तेल थोप कर पहर भर नदी में बुड़की मारता, फिर चौके में बैठकर चभर चभर हुआ हुर लेता, फिर एक बड़ी सी डकार लेकर खैनी गोठी आता हुआ टोले में निकल जाता। शिव महतो धंधे में अक्सर दिनों महीनों गायब रहता। कुछ गुमसुम है, वह पूछता। चुप रहो, हमार जियरा न जराओ, शिव बो कहती। जो पूछते हैं उल्टा बोलती हो, शिव बगैरता। हमारे तो कर्म ही फूटे हैं, शिव बो भी चिड़ चिड़ करती। मरकटवा को भेजती हो कि नहीं, शिव जैसे बस गैबत में पूछता। नहीं, रात भर मोही छाती से छाती चिपकाए सोती रहत है, शिव बो ऐंठ कर बोलती। तो फिर 5 बरिस हो गए, शिव महतो ने अपने घरवाली की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। बातों में मन भोग डालोगे तो सोचते हो मन भोग खाने को मिलेगा, शिव बो ने ताना मारा। मेरी बात का जवाब दे, शिव ने आवाज ऊंची की। बांझ बंजर लाए हो तो भोगेगा कौन, अब काहे चुनचुना रहे हो, कोई घंट में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, शिव बो ने बिफर कर कहा। तो खदेरो हरामिन को बंश बरखा नहीं देगी तो कितने दिन बैठा के खिलाएंगे, शिव उठ गया। उसारे में खड़े उसकी पतोह सामने पड़ गई तो उसने आव देखा न ताव, झट से झोंटा पकड़ा और आंगन में गिरा कर लतियाने लगा। ऊपर से शिव वो एक पीढ़ा लेकर दौड़ी और दे धबाधब दे धबाधब। बहू ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। कोहराम सुनकर मरकटवा दुआरे से भद भद दौड़ता हुआ आया तो देखता है बाबू अम्मा दोनों उसकी मेहरारू पर पीले पड़े है। वह जहाँ का तहाँ थम गया। क्या कर रहे हो बाबू, मर जाएगी, उसने दूर ही से कहा। चुप सारे मऊगड़े, कहता हुआ शिव महतो घर से बाहर हो गया। रात को जब सब और सूता पड़ गया तो शिव बो ने शिव महतो से कहा, इतनी खरीद फरोख करते हो, इतना जस है तुम्हारा, इस बांझ का भी सौदा क्यों नहीं कर लेते। चुप बेसहूर, शिव महतो उठकर बैठ गया। धंधा करते हैं तो करते हैं, धंधे की बात और है। इसके माने कि अपने घर की बहू बेटी को ही बाजार में चढ़ा दें। तो लेके चाटो, शिव बोने बिछावन से उतर गए। बात टल गई, लेकिन जो कीड़ा शिव बोने डाल दिया था वह शिव महतो के दिमाग में को काटता रहा। एक इस बीच वह धंधे के काम से कई दिनों तक बाहर रहा। लौटा तो काफी खुश था। खाना खाने बैठा तो शिव वो बेना डुलाती हुई उसे ताड़ती रही। जरूर कोई बात है, कहीं गहरा हाथ मारा होगा। शिव बार बार कौर डालते हुए सिर उठाता तो अपने घर वाली को देख कर मुस्की काटता। अरे बोलो भी, बहुत नौटंकी हो गई, शिव वो ने छनक कर कहा। समधी जी के यहाँ गए थे, शिव ने आवाज उठा कर कहा। जिस चूल्हे पर रोटी फुलाती हुई उसकी पतोहू सुन ले। पतोह ने घूंघट के भीतर से अपने ससुर को ताका। बड़े खुश थे लेकिन शिकायत भी कर रहे थे। शिव महतो ने उत्सुकता जगाई। शिकायत क्या करेंगे, शिव बो चमक कर बोली। कह रहे थे छौड़ी को देखे कितने दिन बीत गए, शिव बोला। अब की जाते हो तो लिवाते जाओ, शिव बो ने कहा। वही तो हमने कहा, शिव महतो अचौने के लिए उठ गया। पखवारे भीतर ही एक दिन शिव महतो अपनी बहू बहुरिया को खूब लाल साड़ी पहनाए छनन मनन लेकर निकला। रेवती टीशन के से गाड़ी पकड़ी और बकुल्हा उतर गया। वहां से चार कोस पैदल जाना था। दोनों आगे पीछे चले, रास्ता एकदम निराट, कहीं कोई आदमी का जीव नहीं। कभी कभी धूप में उगताया हुआ कोई कौआ ऊपर से गाँव गाँव करता हुआ गुजर जाता। गर्मी का महीना, डेढ़ कोस बाद पकड़ी का एक छांदार पेड़ था, वहीं सुस्ताया जा सकता था। तभी आगे से एक आदमी प्रकट हुआ जिसने शिव महतो को सलाम ठोका। सुरेमनपुर बाजार के पिछुआरे का माल है, सुभीते का है, उस आदमी ने कहा। आज ही उठा लो, नहीं किसी और के हाथ लग जाएगा, कटावन साहू का संदेश है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने पावलगी की ओर निकल गया। शिव महतो अपनी पतोह को सुना सुना कर बरबराने लगा। बड़ा नुकसान हो जाएगा, बाकी बहुरिया को नहर छोड़े बिना क्या कर सकते हैं। वैसे तो बड़ा सौदा था, क्या बताएं। आजकल तो हमारे कुदिन न चल रहे हैं, इसी तरह बड़बड़ करता हुआ आगे और मरकटवा वो पीछे, दोनों भरी दुपहरिया में पसीना पोंछते चले जा रहे थे। तभी वह छांदार पकड़ी का पेड़ आ गया, दोनों उसकी उभरी जड़ों पर अलग अलग दिशा में मुंह किए सुस्ताने लगे कि शिव महतो ने अपनी पगड़ी उतारी ही थी कि एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। का हो महतो, ये बिकट दोपहरिया में कहवा, उसने पूछा। अरे धनेश्वर बाबू रउआ एक लूह लपट में कहा, शिव ने मुड़ी उठाकर देखा। हितई से आ रहे हैं, घरे जा रहे हैं, उस आदमी ने कहा। तो हरे नैहर के हैं, दक्षिण टोला के, चिन्ह तो नहीं बहुरिया, शिव ने अपने पतोह से कहा। मरकटवा बो ने पल्ले की ओर से उस आदमी को देखा और दूसरी ओर मुंह फेर लिया। धनेश्वर बाबू आप तो भगवान की तरह उतरे हैं, शिव महतो ने हाथ जोड़ते हुए कहा। का बात है महतो, उस आदमी ने पूछा। अब यही एक आदमी सनेसा दे गया, सुरेमनपुर बाजार में बड़ा चौक है, चौक एक ठो सौदा बा, नहीं उठाएंगे तो बड़ा लाश हो जाएगा, शिव ने कहा। तब वह आदमी बोला, आपन तो एकरे घरे के हैं, पाछे पाछे चली जाएगी, कौनी गठरी मुठरी भी नहीं है, इतने मेहरबानी चाहिए, शिव बोला। अरे एमे कौन बात है, लिवाते जाएंगे, वह आदमी उठ गया। शिव महतो ने अपनी पतोह को समझाया, घरे के आदमी हैं, बस कोसे भर तो है, जल्दी ये मरकटवा को भेज देंगे। मरकटवा वो पहले तो कनमनाई लेकिन बेबस भी थी, वह रास्ता भी नहीं जानती थी। उसने चारों ओर नजर उठाकर ताका कि कुछ चिन्ह पहचान में आए, लेकिन वहां तो दोपहरिया लहर मार रही थी कि आंख ठहर ही नहीं रही थी। उसके लिए सब कुछ असूझ था। वह आदमी आगे बढ़ा तो वह भी उसके पीछे पीछे चुपचाप आगे बढ़ी। इनके भेज दे, उसने मुड़कर पल्ले की ओट से ही अपने ससुर से कहा। जरूरे जरूरे, शिव महतो बोला। फिर वह अपने पतोह को एक बछिया की तरह उस आदमी के पीछे पीछे जाते ताकता रहा। सफेद चमकती दोपहरिया में धीरे धीरे वह एक लाल धब्बे की तरह सिकुड़ती गई। थोड़ी देर बाद वह पीछे पलट पड़ा। ये बात ठीक नहीं भाई बाबू, मरकटवा को जब बात मालूम हुई तो उसने कहा। का ठीक नहीं भाई है, शिव महतो बोला। ब्याहता रही घर गृहस्थी का सब काम तो उठाए थे, मजूरी नहीं समझ लेते। मरकटवा बोला, अब उहे कहाउ ति भय, डंस के भईने मस, मस के भैली कुटकी, कुटकी के भक्का भाए, माने तोहरे बाद जग्गा महतो के कुर्सी नामा खत्म, यह चाहते हो ना। शिव महतो ने बिगड़ कर कहा। मरकटवा इस पर कुछ नहीं बोला। ए बेटा देखते रहो, अब की बीच के कैसी लाते हैं, चुरई अस तह तह उज्जर। शिव महतो अपने लड़के पर थोड़ा पसीजा, लेकिन मरकटवा चुपचाप उल्टे पांव लौट गया। उसने बंसी उठाई, गढ़ही से केचुए खोदे और नदी की ओर रवाना हो गया। वह दिन भर मोड़की मारे नदी किनारे बैठा हुआ बंसी लगाए रहा। सांझ तक दो ठो गरैया मिली तो वह बनकटे में गया। बनकटे में पहुंचते पहुंचते घड़ी भर रात हो गई। वहां उसने खर पतवार बटोर कर मछलियां भूंजी और खाता रहा। फिर उसने नकटी दाई के चौरे पर सिर पटक पटक कर कई बार सिरदा लिया और वहीं सो गया। भोर हुई तो वह पर के दो कने पर चढ़ गया और मुंह के सामने हथेलियों में का भोंपू बनाकर भरपूर आवाज में गलगला कर चिल्लाया, दोहाई नकटी दाई के, तू ही नियाव करी है हेर माई। अपनी पतोह को इस तरह सलीके से ठिकाने लगाने के बाद शिव महतो ने मरकटवा के लिए दूसरी औरत तलाशने का अभियान शुरू किया। शिव महतो की एक ही इच्छा थी कि अब की उसकी पतोह खूब गोरी हो, जिससे उसका वंश बदल जाए। तो जैसे गाय भैंस ठोंक बजा के खरीदते हैं, उसी तरह शिव महतो पतोह खोजने निकला। शिव महतो की मांग कुछ इस तरह हुआ करती थी, हथगढ़ गुड़हर हो, खूब गोरी हो, मुंह खरिया तनी ठीक ठाक हो, नाक नक्शा आखिन कान अपनी जगह पर हो, लाज शरम माने सबका सोझा मुंह न खोले, हर घड़ी लपर लपर जन करे, सास ससुर के आदर करे, माने सर्व गुण संपन्नी। शिव महतो जहाँ जाता अपनी पसंद की इसी तरह पहले बखानता, फिर पूछता, है कौनी ऐसा माल तोहरे जवार में, जौन दाम परी तौन मिली जाई, दाम के फिकिर जन कर, का हो महतो, अब की कौनो राजा महाराजा के मेहरारू चाही क्या, धंधे का कोई आदमी पूछता। सच्चो बताई, शिव महतो लजाते हुए कहता, और का आदमी बोलता, आपकी पतोह चाही रे पतोह। शिव बोलता, धंधे का आदमी ठठाकर हंसता ही जाता, एमे हंसे का कौन बात ही बा। शिव थोड़ा खींच कर बोलता, बउरा गए हो महतो, ऐसन त्यूतम्मा कहवा मिली, सामने वाला कहता। लेकिन शिव महतो ने आसरा नहीं छोड़ा। इसी सिलसिले में वह चरणमा सिंह के पास पहुंचा। चरणमा सिंह बिहार बॉर्डर से माल सप्लाई करते थे, माझी इस पार उस पार में काम बन जाता था। शिव ने उनसे भी अपनी त्यूतम्मा के गुल बखाने उत्तमा के गुल बखाने है तो ऐसा एक माल, चरणमा सिंह ने कहा। है शिव महतो ने की खेचू आगे निकल आई, बाकी थोड़ी दूर पर है, चरणमा सिंह बोले। अरे बाबू साहेब, चंद्रलोक सूरजलोक जहाँ भी हो, खन के निकाल लीजिए। शिव बेताब हो उठा, उदासी जी की मठिया पर है। चरणमा सिंह ने फिर कहा, कौनो भगतिन है का। शिव महतो का मुंह थोड़ा बिगड़ गया। नहीं महतो, यहाँ खतरा था इसलिए उदासी जी के पास रख दिया, अपने माल है, देसावर से लाए थे, तराई से। सिंह बोला, तो उदासियों जी गैंग में शामिल हो गए। वाह रे बाबा बाबू साहेब, शिव खुश हो गया। कब ले चाही, बाबू साहब ने पूछा। जितना जल्दी हो सके, शिव बोला। बाकी मठिया के माल पुआ चाभ के तनी मोटा गई है, चरणमा सिंह ने कहा। सब मोटाई झर जाई महाराज, चिंता जन करें, शिव बोला। वैसे किसी के सामने नहीं पड़ती, बड़ी सुलक्षणी है बेचारी, सिंह साहब ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। ई तो और भी अच्छी बात है, मरकटवा के माई उघार उतान पसंद नहीं करती, शिव बोला। ठीक है, आजे मंगवा लेते हैं, चरणवा सिंह ने कहा। मंगवा क्या लेते हैं, वहीं से उठा लेते हैं, शिव ने कहा। शिव महतो जब अपने होने वाले पतोह को लेकर बस में बैठा तो उसे बड़ा अजब गजब लगा। औरत काफी मोटी ताजी थी, लेकिन उसकी बाहें जो चादर में से कभी कभार झलक जाती थी, काफी दुबली और पीली। औरत बस में दांत ठाट कर बैठी थी, इसलिए कहीं से भी उसे पूरी तरह देखा नहीं जा सकता था। और फिर शिव महतो इस बार माल नहीं अपनी पतोह ले जा रहा था। वह थोड़ा थोड़ा सब क्या भी रहा था। बस से उतरते समय शिव तेज काइया निगाहों से औरत को लगता रहा। बहू ले जानी थी, अतः उसने औरत को बस स्टेशन पर रोक और सामने की दुकानों के पीछे से डोली वालों को आवाज दी। फिर उसने पतोह को डोली में बैठाया और पीछे पीछे ढुलकी लेते हुए चलने लगा। बहुरिया बड़ी भारी हैं, एक कहा नेठिठोली की। खाई पी है, शिव महतो ने कहा। उहे तो, कहार ने ठेका लगाया। आंगन में जब टोली उतरी तो टोले की औरतों का एक पूरा हुजूम भरभरा कर उतर आया। छोटी बड़ी कुंवारी लड़कियां खांची लिए काम पर जाने को तैयार, बहुएं कुटनी बुढ़िया ढेर निकाले मरियल नंग धड़ंग बच्चे शिवबू के चापाकल से पानी भरने आई। औरतें सभी बहुरिया की एक झलक पाने के लिए आंगन में आकर ठड़ी हो गई। पता नहीं किस अभागिन के भाग में अब शिवबू लिखी हैं। दिन रात की खटान और थुरान अलगे से। पहली बेचारी कुआं कांदों से बची तो जाने किस घाट लगी। जौन कठ करेजी आपन बेटी दिया ओके नरकों में ठिकाना ना मिली। वहीं सब सोचती हुई औरतें गोल बांध कर फुसफुस कर रही थी। शिवबो ने परिछावन किया और पतोह को डोली से उतरने को कहा। अभी चार दिन बाद गठजोरा की साइत है, तभी बिरादरी को भोज भात और पंचन का फासिला कौन बोलेगा शिव महतो के खिलाफ। उतरो बहुरिया, शिवबो ने थोड़ा झुंझला कर कहा। लेकिन औरत को उतरने में जैसे तकलीफ हो रही थी, उसने संभल कर अपने दोनों पैर पहले बाहर निकाले। ए बाबा, ऐसे डोली से उतरते हैं, भीड़ में से एक औरत बोली। कई औरतें आंचल मुंह में ठूस कर अपनी हंसी रोकने का प्रयास करने लगी। दुल्हन हाथों को पीछे टिका कर धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। शिव उसको इस तरह उतरते देख कर चलाई आंगन की ठट भीड़ की ओर उसने आंखें तरेरी। फिर उसने कमर के पीछे हाथ लगाकर कुछ इस तरह टोया जैसे सहारा दे रही हो, जैसे वह फंस गई हो। उसका पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा। घूंघट के भीतर से औरत का पीता हड़ियल और ढलवा मुख झलक उठा और आंखें जैसे सदियों से न सोई हूँ। बड़ी दुबर है बेचारी, किसी औरत के मुंह से निकला। खाली मुंह खरिये दुबर बा, नीचे से खूब मोटा है कि, किसी और ने कहा। गांव भर की मुंह फुहर डोकी फुगा भी ठेंगुरी लिए आंगन में ठड़ी ठड़ी लग रही थी। शिवबो दुल्हन को लिए लिए जब भीतर जा रही थी, डोकी फुआ उसकी पीठ पर आंखें गड़ाए रही। बीके ठीके बा, उन्होंने आंगन से बाहर आते आते कहा। कांचियों के इतिजात बा, वे बड़बड़ करती बाहर निकल गई। कांची मेले और सोंठ से बनाया गया एक विशेष प्रकार का हलवा चच्चा के लिए। आही ए दाओ, ई कवन लक्षण, कई औरतों के मुंह से अलग अलग फुसफुस में एक ही आश्चर्य कनकना कर बाहर निकला। घर के भीतर जाते ही शिवबो के तन बदन में आग लग गई। उसने बहरी किवाड़ी बंद की और झटके से कोहबर में पहुंची। उसने बहुरिया की लाल चद्दर खींच कर फेंक दी। औरत रूपी बहुरिया रूपी दुल्हन रूपी पतोह रूपी मरकटवा की नई नवेली मेहरारू अपनी इस तथा कथित नई सासू जी को निहारती रही। शिवबो की आंखें फटी तो फटी ही रह गई। फिर उसने अपने माथे पर दो हत्थड़ मारा और दहाड़ मारकर रोते हुए चिल्लाई, आय रे हमरा करमुआ ए मरकट के बाबू। शिव महतो द्वारे से दौड़ा दौड़ा आया। जब उसे सत्य का संज्ञान हुआ तो वह सन्न रह गया। उसने तुरंत तय किया कि क्या तो माल फेरना है या बोली लगानी है, और इसमें देरी नहीं करनी है। दो घड़ी रात चढ़ते ही उसने मरकटवा को उठाया, बड़का वाला सिंकड़ करिहाई में लपेट के लिए। शिव महतो ने कहा। सिंकड़ का हुई बाबू, मरकटवा ने अपनी बाल जिज्ञासा प्रकट की। तोरे गणिया में डाले के बाद, शिव खुनसा कर बोला। उधर शिवबो अपने पतोह के विदाई समारोह में लगी हुई थी, लेकिन औरत थी कि ठाठ काठ की तरह चुप थी। थोड़ी देर बाद आगे आगे शिव, बीच में बहुरिया और पीछे पीछे सतुगा भूजा गठियाए पानी की मिटिया लाठी में टंगाए मरकटवा बनकटे की ओर चले। बनवास का यह अनोखा नजारा था। भोर की पहली लाली के साथ ही शिव महतो बनकटे में लौटा। सब ठीक ठाक है, उसने पूछा। क्या हुआ बाबू, मरकटवा ने पूछा। चरणमा सिंह नंबरी फेलबाज है, शिव ने कहा। हम पहले जानते थे, मरकटवा ने रोआ गिरा दिया। हाँ तुम तो अंतर जामी हो लदभे सर कहीं के, शिव ने चिढ़े हुए कहा। रतजगे के कारण मरकटवा को बार बार नींद के झोंके आ रहे थे। शिव ने देखा कि औरत के एक पैर के गोड़हरे में सीकर फंसा हुआ है और वह बेसुध सो रही है। अब क्या करोगे बाबू, मरकटवा बोला। हम अभी जाते हैं, 8-10 कोड़ बाजों को संदेश दे आते हैं, पसंद तो आ ही जाएगी, रात में ही आएंगे। किरण फूटते ही तुम इसको लेकर उधर पूरन की अनहरिया में लुका जाना, कहीं कोई सुखभुग न हो। देखना चना चबेना कर लेना, इसे भी दे देना, न खाए तो जोर जबरदस्ती माल मुरझाना नहीं चाहिए, शिव महतो ने सोई हुई औरत को देखते हुए कहा। हमें तो वहाँ ही आ रही है, मरकटवा ने छोटे बालक की तरह। खबरदार जो सोए तो, शिव ने डांटा। सोने के लिए जिंदगी पड़ी है। फिर वह मुड़ा और कछार में उतर गया। मरकटवा उसकी पीढ़े जैसी चौड़ी चकली पीठ को ताकता रहा। कछार के हिंगुआ के हरे हरे कांटे थे। महतो उनसे बच बच के चल रहा था। चरणमा सिंह की बात उसके करेजे में अंगिन बाण की तरह गड़ी हुई थी, लेकिन वह क्या कर सकता था। ऐसे रोजगार में कोई लिखत पढ़त तो होती नहीं कि इस्तगासा दाखिल कर दोगे। जबान की बात होती है, अब कोई जबान से फिर जाए तो उसका तो कोई दोख नहीं। उसने तो विश्वास पर सौदा किया था, हर बार कहता है जिंदगी भर से कर रहा है, बाकी कोई कोड़बाज दगा नहीं किया, लेकिन चरणमा सिंह कर गए। यह सिर्फ मिनती कर सकता था, लेन देन का हवाला दे सकता था, सो उसने दिया। हमारा आपन का बहुत पुराना रसम रसूख है बाबू साहेब, उसने हार कर कहा। सो तो है और आगे भी रहेगा, बाकी सौदा सलूक में फेर बदली नहीं, और फेर भी ले तो कहाँ सप्लाई करेंगे हम, इस लायक कहाँ है वह, चरणमा सिंह ने कहा। लायक बेलायक तो आप जाने सरकार, आपने भी तो हमें बेलायक ही दिया था, दिया मांगा था क्या और धरा दिया क्या, शिव ने दबी जबान में अपनी बात पेश की। अरे तुम्हें तो जमाने ऊपर गुणवंती नार चाहिए थी तो दिया कि नहीं, चरणमा सिंह ने हड़काया। पतोह चाहिए थी मालिक, गा भी गाय नहीं, शिव ने पैतरा बदला। पतोह चाहिए थी तो संतान के लिए ही ना, एक ही सौदे में तुम्हें तो दूना माल मिला महतो, सिंह साहेब हंसे। संतान आप बुंद से आपन बुंद से चाहिए ना मालिक, शिव ने समझाने की कोशिश की। आपन बुंद, चरणमा सिंह के तेवर बदले। अब ई तो जग जाहिर वाली बात है ना सरकार, ऋषि मुनि कह गए हैं, शिव ने शांत भाव से कहा। आपन बुंद क्या होता है बे, चरणमा सिंह खटिया से उठ गए। मालिक हंसी काहे कर रहे हैं, शिव ने सोचा मामला कहीं बिगड़ न जाए। तुम लोग आपन बुंद से पैदा हुए हो, चरणमा सिंह ने उसी तेवर में कहा। बस बस मालिक, ई सब सुने खातिर हम नहीं आए यहाँ, शिव उठकर खड़ा हो गया। तो चले जाओ, चरणमा सिंह ने कहा। जाते हैं शिव बोला। कि तुहार विदाई करें, सिंह ने फिर कहा। बाकी ठीक नहीं है, शिव बोला। क्या बोला बाबू साहब, तन गए, धंधे में बदकारी निमाफ है बाबू साहेब। शिव उठा और चला आया, उसने कहीं नहीं सुना कि चरणमा सिंह पीछे का भड़क रहे हैं। कौने कुघरी में ई सौदा किया बेलस बलेश्वरनाथ, वह चलते चलते भुनभुनाया। हे उठो, मरकटवा ने औरत के पैर में बंधे हुए सीकड़ को थोड़ा झटका दिया। औरत उठकर बैठ गई और मुचुर मुचुर इधर उधर देखने लगी। उसे पिछली रात का ध्यान आया, बदन में जगह जगह दर्द हो रहा था, बच्चा पेट में कुलाचे भर रहा था। औरत ने पेट पर हाथ रखा, उसे लगा कभी उसका सिर है, कभी बंधी हुई मुट्ठियां, कभी नन्हे नन्हे पैर। वह अपने सनातन खेल में मगन था, उसके लिए सवेरा हो रहा था, दिन उग रहा था, वह माँ की राक्षसी यातना से बेखबर था। औरत बार बार उसके खेल पर अपनी हथेलियां उस ओर सरकाती, जहाँ जहाँ वह अवतरित हो रहा था। दर्द और टूटन से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, और सुबह की पहली धूप में यूं लगता था जैसे सरसों के फूलों को पीस कर उसके चेहरे पर लेप दिया गया हो। फिर भी वह मुस्करा रही थी, उसके लिए वह सिर्फ उसका बच्चा था, उसके हाड़ मांस खून पसीने उसके दुख दर्द हिकारत अपमान से बना हुआ पला पुसा, और वह जिंदा था, खेल रहा था। कभी कभी उसे लगता कि वह लगातार सोई हुई है और यह सब कुछ सपने में चल रहा है। 2-2.5 बरिस हो गए, उसकी नींद खुलने का नाम ही नहीं लेती। उसे लगता है कि जब वह नींद से अंगड़ाई लेती हुई उठेगी तो माँ के बिछौने पर होगी। वह जोर से चीखेगी तो माँ दौड़ी हुई आएगी। माँ को देखते ही उसे लगेगा कि वह सपना देख रही थी। धीरे धीरे उसका डर दूर हो जाएगा। माँ बार बार पूछेगी, वह इतने जोर से चिल्लाई क्यों, लेकिन वह कुछ नहीं बताएगी। इतने डरावने सपने को बताने में भी डर लगेगा, लेकिन यह कभी न खुलने वाली नींद आखिर कब खुलेगी। वह कितनी कोशिश करती है, लेकिन सपना है कि खत्म ही नहीं होता और बढ़ता ही चला जाता है। उठो, उधर अन्यार में चलते हैं, मरकटवा ने उसको ताकते हुए कहा। थोड़ा थाम लो हमका, औरत ने जैसे सब कुछ बोलते हुए कहा। साकण हाथ में लपेटता हुआ मरकटवा आगे बढ़ा। औरत ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। मरकटवा ने सिंकड़ अपने कंधे पर डाला और उसके दोनों हाथ थाम कर ऊपर उठाने लगा। मजे मजे से ठड़ी हो, हाँ, उसने कहा। अब किस नरक में जाना है, औरत ने बेझिझक मरकटवा का मुंह ताकते हुए कहा। उधर अंदर अन्हरिया में बताया तो, मरकटवा बोला। अन्हरिया क्या, औरत ने पूछा। उधर भूतहवा नारे में जो जंगल है ना, वहाँ दिन में भी अन्हार रहता है, उसी को अन्हरिया बोलते हैं, मरकटवा ने समझाने के लहजे में कहा। उधर क्यों, दिन में यहाँ कोई आ जाए तो, मरकटवा आगे आगे चलने लगा। घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे उस सूखे नाले में हेठियाने लगे। भीतर गहरा सन्नाटा था। वहाँ बनकट के फूलों की तीखी महक थी, जिनके इर्द गिर्द छोटी पीली तितलियां उड़ रही थी। काफी नीचे उतर कर वे एक जगह रुके। वहाँ आछी का एक छोटा सा लेकिन सघन पेड़ था। वहाँ ढेर सारी भुरभुर ठंडी मिट्टी दिखाई दी। उसी के बगल में एक भकंदर बिल दिखाई पड़ा। शाही का बिल है, मरकटवा ने इधर उधर बिखरे शाही के कांटे उठाए और उन्हें परखता रहा। जानती हो, उसने औरत को शाही के कांटे दिखाते हुए कहा। जिस घर की दीवार में शाही का कांटा खोस दो, वहाँ महाभारत मच जाता है। महाभारत तो मचा ही हुआ है, औरत भुनभुनाई। क्या बक रही है, मरकटवा ने पलट कर देखा। उसने कांटे बीन कर दूसरी ओर फेंक दिए। भुरभुरी मिट्टी को पैर से फैलाकर बराबर किया और बैठकर खैनी मलने लगा। ये तो जैसे तोसक बिछा है, उसने भुरभुरी मिट्टी पर बैठने का मजा लेते हुए कहा। एकदम जानवर हो तुम लोग, औरत बोली। खैनी मलते हुए उसने कनखियों से औरत को देखा और अभी तक खड़ी थी। डरो मत, शाही अपना वासा छोड़ गई है, उसने कहा। औरत ने आछी के तने का सहारा लिया और धीरे धीरे बैठने लगी। जब पूरी तरह बैठ गई तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, हे धरती माई। ये जगह अच्छी है ना, मरकटवा ने संवाद चालू रखने की गरज से कहा। मुझे ढाठी दोगे क्या, औरत ने अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ बच्चा बार बार हुड़क मारता हुआ प्रकट हो रहा था। ढाठी देना, गर्दन के ऊपर नीचे दो लाठियां रखकर उन्हें इस तरह दबाना कि आदमी मर जाए, हत्या करना। पागल हो क्या, बाबू को अपने रुपए की फिक्र है कि नहीं, मरकटवा हंसा। तब काहे को लाए हो, औरत ने पूछा। बाबू कोड़बाजों को खबर करने गए हैं, मरकटवा ने निर्विकार भाव से कहा। कोड़ेबाज कौन, औरत सिहर गई। तुम्हारे ऊपर बोरी लगाएंगे ना, मरकटवा बोला। हमें फिर बेचोगे, औरत ने सवाल किया। अब क्या फर्क पड़ता है, जैसे एक घन वैसे 100 घन, लेकिन तुम बकबक बंद कर रो तो, मरकटवा ने आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा। और सुनो, हमको वहां ही आ रही है, जरा टानक लेता हूँ, बाबू की खुरखुर लगे तो आवाज लगा देना, नहीं बिगड़ेंगे। मरकटवा ने सीकड़ को अपने पैरों में लपेटते हुए कहा। वह तुरंत ही पसर गया और कुछ ही पलों में खर्राटे लेने लगा। क्या सुख ने दिया है, औरत ने उसे देखते हुए सोचा। अब तो वह मनाने लगी है कि यह सपना ही हो, क्योंकि सपना नहीं होगा तो जिएगी कैसे। लेकिन तभी एकाएक उसे अपने चचिया ससुर का राक्षसी चेहरा याद आता है। फिर उसे लगातार उकाई आ रही है, उकाई बंद ही नहीं होती। चचिया ससुर उसे उसके बाप के घर छोड़ आता है, लेकिन बाप दूसरे ही दिन फिर उसे उसी गांव के पिछुआरे छोड़ आते हैं। वह बहुत रोती कलपती है, लेकिन कुछ नहीं होता। बाप कहते हैं जेकर पाप वहीं संभारे, हमारे लिए तो मर गई, चाहे कुआं में पड़ो उफर पड़ो। वह बहुत सोचती है कि कहीं कुआं इनार फान ही जाए, लेकिन उसे डर लगता है। तब रात के अंधेरे में लुकते छिपते वह फिर अपने ससुराल का वही दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा वही राक्षस खोलता है और गुस्सा होने की जगह मुस्की मारता है और उसकी बांह पकड़कर दरवाजे के अंदर कर लेता है। वह इधर उधर देखती है, वन में खाली साए साए है और एक आदमी की चिंघाड़ती हुई नाक। उसे लगता है उसे फिर उकाई आने लगेगी। वह बुरी तरह अपनाने लगती है, क्या वह सीकड़ खोल दे और चुपके से भाग निकले। वह इधर उधर देखती है, लेकिन वह कितनी दूर जा सकेगी और पकड़ी जाएगी। वह हताश हो जाती है, न जाने कब उसे अपनी दुनिया में लौटने का समय आएगा। आएगा भी नहीं, क्या वह इस बच्चे को जन्म देने में ही चल बसेगी। वह अपने पेट को छू छू कर देखती है। वह बार बार अपने चारों ओर देखती है। चढ़ती दोपहर का चटाक नीला आसमान, हवा के झोंकों में आछी के पत्तों की सरसराहट, बनकट और पलाश और एकवन की झाड़ियों का हवा के सर्राटे से बार बार झुकना और एक अजीब सी आवाज, सर्र सर्र सर्र। यह दिन का अंधियारा और बगल में शाही का खोखल, दूर नीचे नदी का कछार और उस पार कहीं चालू पंप सेट की फुक फुक की आवाज, और यह छुट्टे भैंसे की तरह मोटाया आदमी जो उसके गुड़हरे में फंसाए सीकड़ को अपनी घुट्टी में लपेट कर सो रहा है और खुर्राटे ले रहा है। यह सपना ही है, जरूर है, सपने में ही यह बच्चा है जो बार बार उसके पेट पर ऊंची नीची जगहें बनाता हुआ उगता है और फिर कभी इतना चुप हो जाता है कि उसके सन्नाटे खींचने से ही उसे डर लगने लगता है, उसे दर्द होने लगता है। वह उठकर घूम फिर भी नहीं सकती। फिर वह पस्त पड़ जाती है और इस छल के प्रकट होते ही कि नहीं, जो उसकी आंखों के सामने है, पिछले वर्षों जो कुछ हुआ है वह सपना नहीं है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूखाई होगी मतवाराम, देखते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद बचा है कि नहीं। उसके सपने में एक अच्छी जगह भी थी, जब वह भगत जी के पास थी। कितने दिन, आधे अगहन बीते वह पहुंची थी और अब फागुन चैत है। तब उस अंधेरी रात में उसके चचिया ससुर ने उसका सौदा चरणमा सिंह से किया था, वही मठिया के पिछुआरे। अंधेरे में खड़ाऊ पहने चोरबत्ती लिए मठिया के महंत उदासी जी आए। उन्होंने चोरबत्ती जलाकर सभी को देखा, उसके चचिया ससुर को, चरणमा सिंह को, और फिर उसे, जो डर के मारे कंठ में रुलाई रो के खड़ी थी। यह आदमी तो धंधे का नहीं है, उदासी जी ने उसके चचिया ससुर पर लाइट फेंकी। औरत का ससुर है महंत जी, चरणमा सिंह बोला। कोई खतरा तो नहीं करेगा, उदासी जी ने कड़कदार आवाज में पूछा। नहीं महाराज, निशा खातिर रहे, चरणमा सिंह का जवाब था। तो इसको दाम दे दो, महंत जी पलट कर मठिया की सीढ़ियां चढ़ने लगे। महाराज एक ठो औरो अरज है, चरणमा सिंह ने कहा। अब क्या है, उदासी जी पलटे। हमारे घर में लड़का बहु आए हैं हबड़ा से, चरणमा सिंह बोला। तब अभी इसका कहीं और ठिकाना करना होगा। अच्छा तो ये बात है, बाकी खबर न हो कि मठिया में माल रखा जाता है, उदासी जी ने कहा। राउर हुकुम है बाबा, इतने बहुत है, चरणमा सिंह ने कहा। नगीन दास, ए नगीन दास, उदासी जी ने अंधेरे में हाँक लगाई। मठिया के पिछवाड़े जिधर गौशाला थी, वहीं से एक बूढ़ा खंखड़ साधु अपनी छड़ी जमीन पर पटकता हुआ प्रकट हुआ। हाँ महाराज जी, उसने कहा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक ठो माया है, इसे अपनी कोठरी में ले जाओ, उदासी जी ने कहा। नगीन दास के गले में थूक अटक गया। यह कैसा अनघट, उन्होंने अपनी झुकी कमर को थोड़ा सीधा करने की कोशिश की, लेकिन एक तो अंधेरा, दूसरे आंखों में मोतियाबिंद, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। बाकी उदासी जी कह रहे हैं तो वहाँ माया होगी जरूरे। सो नगीन दास ने कहा, बाबा हम तो कब के साधु आ गए, अब हमके कंचन कामनी से का मतलब, का भगत, उदासी जी से मिलाए, लेकिन ऊपर से हंसते हुए बोले, गाय गोरु नहीं रखते हो, समझ लो एक ठो खूंटा और बढ़ गया, अस्तिता है, दो चार दिन की बात है, फिर कहीं और टसका देंगे, महंत जी ने नगीन दास के जवाब का इंतजार नहीं किया और खटखट खड़ाऊ बजाते सीढ़ियां चढ़ गए। बड़ा धर्म संकट है, नगीन दास ने कहा और अंधेरे में खड़े रहे। तभी उन्हें औरत के डुंडुक डुंडुक रोने की आवाज सुनाई दी। नगीन दास एकदम से घबरा गए। मतवा रोई जन जनी रोए माता राम, आए माता राम हमके लौकत नहीं तबो हमरा पाछे पाछे चल जाए। नगीन दास अपनी छड़ी पटकते हुए आगे आगे चल दिए। औरत ने एक बार अपने चचिया ससुर को ताका, फिर चरणमा सिंह को। उसके चचिया ससुर ने उसे अंधेरे में मुक्का तान कर इस तरह धमकाया जैसे वह लौटने वाली हो। उसने अपने मुंह में आंचल ठूस लिया जिससे रुलाई रोक सके। आ रही हो माता, नगीन दास ने अंधेरे में आहट दी। औरत नगीन दास के पीछे आ गई। जवाब देने की जगह उसने अपनी नाक सुड़क कर उपस्थित जताई। ठीक है नगीन दास ने कहा। वे दोनों आगे पीछे चलते हुए कोठरी के दरवाजे तक पहुंचे। यहीं रुको मतवाराम, नगीन दास कोठरी के दरवाजे की सिकड़ी खोलने लगे। दिया बारता हूँ। वे अंदर चले गए। अंदर ढिबरी का उजियारा हुआ तो नगीन दास चौखट पर आए। उन्होंने हल्के उजाले में औरत को फिर देखने की कोशिश की। एक छाया सी दिखाई पड़ी। नगीन दास ने औरत से भीतर आने को कहा। फिर वे पलटे और तखत पर बिछी चादर को हाथों से ठोंक ठोंक कर उसकी धूल निकालने लगे। औरत कोने में आकर खड़ी हो गई। कोठरी में पतुही तमाकू की मीठी खुशबू और एक और कोने के गोईठे की आग और राख की मिली जुली महक थी। एक और अलगनी पर दो एक गिरवे अचले और कोने में उठगाई हुई गुड़गुड़ी। लेकिन सबसे अचंभे की बात थी कि कोठरी की तमाम खूंटियों पर तरह तरह के बाजे टंगे हुए थे। एक पुरानी मटमैली सरंगी, फिर ठपरा खंजड़ी, एक पर छोटी सी टुनटुनिया और तो और एक पर पुराने मैले धागे में गुहे हुए घुंघरू जिनकी चमक खत्म हो रही थी। बैठ जाए माता आराम से, तभी नगीन दास ने कहा। अब जौन ले बुला की दास की कृपा है, यह अपन के घर है, अब का करें। ऐसा आडर उदासी जी एकरे पहले कबो नहीं दिए रहे। बाकी डरे जन मतवाराम, रात ज्यादा हो गई है। अरे हमसे कौन लाज शरम, ऊ का कहावत है लइका बिरिधि एक समान, तो हम बोठ ठोट संडासी से कौन लाज शरम, आपन तो हमारी माता हैं। औरत को लगा उसकी हिचकी बन जाएगी। वह तकत की पाटी पर बैठ गई। भूखाई होंगी मतवाराम, देखते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद बचा है कि नहीं। नगीन दास कोने में रखी हंडिया में कुछ चटोलने लगे। ऊपर तो ठाकुर जी की रसोई में बहुत बचा होगा, गाय गोरु खाते रहते हैं, बाकी ऊपर जाना मना है, न ऐ ठाकुर जी की छुतिका लग जाएगा। नगीन दास हंसे। औरत चुपचाप उस बूढ़े को ताकती रही। उसने देखा कि बूढ़े ने थोड़ा सा भात, थोड़ी दाल, थोड़ी बची कुछ तरकारी सब एक थरिया में उलट दी। सब कुछ मिलजुल गया। फिर वह थाली उठाए उसके सामने आ खड़ा हो। खा लो माता, जिए के तबा, उन्होंने कहा।